श्लोक नायकं प्रागुपन्यस गुणतस्तेन विदुषां निराकरणमित्येष मार्गः प्रकृतिसुन्दरः। गुणों के द्वारा नायक को पहले प्रस्तुत करके उसके द्वारा शत्रुओं का निराकरण, यह पद्धति स्वभाव से सुंदर है। काव्य में मुख्य वस्तु कथा होती है, उसका मूलाधार है सत का प्रतिनिधि नायक। अतः नायक का अभ्युदय काव्य का अत्यंत आवश्यक अंग है। इसलिए 17वें श्लोक में अर्थ पुरुषार्थ के कार्य विषयों में नायक का अभ्युदय बताया है। दंडी ने नायक के अभ्युदय कथन के दो प्रकार 21वें और 22वें श्लोकों के माध्यम से बताए हैं। पहले नायक का उत्कर्ष उसके गुणों के द्वारा स्थापित करना चाहिए, फिर उसके द्वारा शत्रुओं का पराभव दिखाया जाना चाहिए। शत्रु पर विजय से पूर्व शत्रुओं के गुणों का वर्णन, उसके साथ संघर्ष का कथन नायक के उत्कर्ष को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। अतः नायक का चरित्र महाकाव्य के आदि में, मध्य के पूर्व भाग में और अंत में सर्वत्र प्रवाही एवं व्याप्त होना चाहिए। मध्य के उत्तर भाग में भी प्रतिनायक के साथ संघर्ष में वह होता ही है। अतः कथाओं में सर्वत्र नायक ही व्याप्त रहे। इसके अतिरिक्त कथा का फल भी नायक को ही मिलना चाहिए। यह मार्ग स्वाभाविक रूप से सुंदर है, अर्थात सबको सुंदर ही लगे ऐसा है। लोक स्वभाव के अनुकूल होने से मंद, मध्यम और उत्तम सभी प्रकार के लोगों को मनोहर लगता है। इक्के दुक्के किराता जूनिय सदृश काव्यों को छोड़कर सभी महाकाव्यों में नायक के अभ्युदय प्रदर्शन का यही क्रम उपलब्ध होता है। श्लोक वंश वीर श्रुतादिनी वर्ण इत्वा रिपोरपि तज्ज या नायकोत्कर्ष कथनम च धिनोति नः। शत्रुओं के भी वंश, पराक्रम और ज्ञान आदि का वर्णन करके उसे जीतने से नायक का उत्कर्ष बतलाना भी हमें अच्छा लगता है। पूर्वोक्त मार्ग के विपरीत यदि पहले शत्रु के वंश, पराक्रम, ज्ञान आदि गुणों की स्थापना से शत्रु के उत्कर्ष का वर्णन करके उस पर नायक को विजय प्राप्त करता दिखाकर नायक का उत्कर्ष बताया जाए तो भी काव्य की फल प्राप्ति की अवस्था में नायक का अभ्युदय सुस्थापित होने से हमें, अर्थात काव्य शास्त्र मर्मज्ञ सहृदय को प्रीतिकारक होगा। साधारण जन को तो काव्य के आरंभ में ही असत प्रतिनायक का उत्कर्ष देकर उद्वेग ही होगा। सत नायक के उत्कर्ष की स्थापना से लभ्य मनस्तोष तो जब होगा तब होगा। रत्न श्री ज्ञान ने इस मार्ग वाली कृति का उदाहरण यह ग्रीववध आदि बताया है। दंडी के अनुसार ये दोनों मार्ग उपादेय हैं, परंतु काव्य के आदि से अंत तक नायक के उत्कर्ष का वर्णन करने वाला काव्य उन्हें विशेष रुचिकर, विशेष सुंदर प्रतीत होता है। यह क उस मार्ग को पहले प्रस्तुत करने से तो व्यक्त होता ही है। ख दोनों मार्गों के लिए प्रयुक्त प्रकृति सुंदर और हमें प्रीतिकारक धिनोति न कथनों की अर्थ छाया के उपर्युक्त सूक्ष्म अंतर से और ग साफ तौर पर निर्व्याज सुंदर कहने से तथा प्रकारांतर से धिनोति न कहकर प्रीतिकारकता से सुंदरता सूचित करने से भी व्यक्त होता है। भरत और अग्निपुराणकार ने इस विषय में कुछ नहीं कहा है। भामह ने यूँ कहा है, वंश वीर ज्ञान आदि से नायक को पहले प्रस्तुत करके अनेका उत्कर्ष बताने को उसी का वध कवि न करे। अगर वह काव्य के शरीर को व्याप्त करने वाले के रूप में अभिष्ट नहीं है और अंत में फल प्राप्ति से अभ्युदय पाने वाला भी नहीं है तो उसका आदि में ग्रहण प्रशंसा व्यर्थ है। इस कथन का आपाततः प्रतीत होने वाला अर्थ प्रकरण के अनुकूल तथा आवश्यक नहीं लग रहा। नायक का वध प्रतिनायक के हाथों होवे यह न केवल लक्षण ग्रंथों में अनुक्त और लक्ष्यों में अनुपलब्ध है, अपितु हमारे चिंतन के मूलाधार सदाश्रय के भी सर्वथा विपरीत है। स्वयं भामह महाकाव्यों को सदाश्रय और नायकाभ्युदय से मुक्त मानते हैं। वह भामह निषेध किसका कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में उचित यही प्रतीत होता है कि भामह के इस कथन में दंडी के भाग का खंडन माना जाए। भामा ने यहाँ नायक शब्द का प्रयोग विपरीत लक्षणा से प्रतिनायक अर्थ में दंडी के उक्त द्वितीय मार्ग में दोष को गंभीरता से प्रस्तुत करने को किया था। महाकाव्य में पहले नायक के वंश, वीर्य, ज्ञान आदि का वर्णन होता है। यदि रिपु प्रतिनायक का वर्णन उस तरह किया गया तो वह नायक ही तो लगेगा। यदि उसका वर्णन काव्य शरीर में व्यापी के रूप में नहीं करना है तथा उसका अभ्युदय भी नहीं दिखाना है तो काव्य में उसकी पहले प्रस्तुति और प्रशंसा व्यर्थ ही तो है। अतः प्रतिनायक को पहले प्रस्तुत करके नायक द्वारा उसके वध के वर्णन से नायक का उत्कर्ष बताने वाला मार्ग उचित नहीं है। परवर्ती आचार्यों में मम्मट भी महाकाव्य के अंग और प्रधान पात्र का अति विस्तार से वर्णन उचित नहीं मानते। आचार्य रामचंद्र ने किंतु मम्मट का यह आक्षेप ठीक नहीं माना है। भामा के आशय को इस रूप में कह, भामा के टीकाकारों श्री नागनाथ शास्त्री और शंकर राम शास्त्री ने तो लिया ही है। ख, प्राचीन परंपरा में भी उनका आशय इसी रूप में लिया जाता था। यह रत्न श्री ज्ञान और वादी जंघाल देव के कथनों से स्पष्ट होता है। ग, शैली की दृष्टि से भी भामक के इस कथन में दंडी के शब्द प्रयोग की स्पष्ट छाया है। यह भामक के नायकम प्रागुपन्यस वंश वीर श्रुतादि भी अन्योत्कर्षाभी हृदया की तुलना दंडी के नायकम प्रागुपन्यस्य वंश वीर श्रुतादिनी नायकोत्कर्ष कथनम से करने से स्पष्ट होता है। ये दो श्लोक हेमचंद्र ने मार्ग द्वयानुवर्तन के संदर्भ में उद्धृत किए हैं। श्लोक अपादह पद संतानो गद्यमाख्यायिका कथा इति तस्य प्रभेदौ द्वौ तयोराख्यायिका कील। विभक्त्यंत शब्दों का पाद रचना से रहित निबंधन गद्य होता है, उसकी आख्यायिका और कथा ये दो भेद होते हैं। काव्य शरीर के एक पद्य रूप की व्याख्या करने के बाद आचार्य दंडी ने उसके गद्य रूप की व्याख्या प्रकृत श्लोक से 33वें श्लोक तक की है। इस श्लोकांश में उन्होंने गद्य का लक्षण तथा गद्य काव्य के दो प्रमुख भेदों के नाम बताए हैं, जिनका उन्होंने अगले श्लोक में खंडन किया है। भरत ने पदबंध दो प्रकार के बताए हैं, बद्ध तथा चूर्ण। निबद्ध छंदोबद्ध पद्य है तथा चूर्ण अनिबद्ध गद्य। पदों का छंदोबद्ध रूप पाद कहलाता है। पादबंध से रहित पदावली गद्य होती है। संतान शब्द सम धंतनु विस्तारे से घ प्रत्यय से निष्पन्न है और समीचीन विस्तार का वाचक है। योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि से युक्त होना ही यहाँ सम से लभ्य समीचीनता है। अतः पद संतान का अर्थ सुबंत तिगंत विभक्तियों से युक्त सव्यय या अव्यय शब्दों का योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि से युक्त विस्तार है। यह इष्ट शोभायुक्त अर्थ का गमक यदि है तो गद्य काव्य कहा जाता है। भरत ने गद्य अर्थ में प्रयुक्त चूर्ण की व्याख्या करते हुए कहा है, छंदो बंधन से रहित अर्थ की अपेक्षा रखने वाले अनियत अक्षरों से युक्त पद समूह को चूर्ण समझना चाहिए। भामा ने गद्य का लक्षण नहीं दिया है। अग्निपुराण में दंडी का लक्षण ही अपादह के स्थान में अपदह का प्रयोग करके दिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ गद्य के तीन भेद चूर्णक, उत्कलिका और गंधिवृत्त लक्षण सहित बताए हैं। पद्य काव्य के मुक्तक आदि नाना भेद होते हुए भी मुख्य होने के कारण महाकाव्य का ही विवरण आचार्य दंडी और भामह ने जैसे किया है, वैसे ही गद्य काव्य के नाना भेदों की चर्चा न करके दंडी और भामह ने उसके केवल दो भेद आख्यायिका और कथा बताए हैं। अग्निपुराण में तीन भेद और बताए हैं, खंड कथा, परिकथा और कथानिका, कहानी। दंडी ने तो इन दो भेदों को ही नहीं माना है। वस्तुतः ये गद्य पद्य महाकाव्य की भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं। छोटे भेदों की चर्चा करना मुक्तक आदि की चर्चा के समान अनावश्यक है। उपलब्ध वाङ्मय में आख्यायिका ग्रंथ की चर्चा सबसे पहले महाभाष्य में मिलती है। पतंजलि ने नायिका, नायक और विषय को लेकर कृत ग्रंथ के रूप में वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, दैवासुरी और राक्षसोसुरी नामक आख्यायिका बताई है और पूर्वोक्त दो के अध्येता और वेत्ता के लिए वासव दत्तिक तथा सौमनोक्त अतिरिक्त शब्द प्रयुक्त किए हैं। पतंजलि के कथनों से आख्यायिका नामक विधा का अस्तित्व तो ज्ञात होता है, किंतु इनके स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। अमरकोश में आख्यायिका को यथार्थ का वर्णन करने वाली तथा कथा को कल्पित कहा है। ये भेद गद्य निबद्ध हैं या पद्य निबद्ध, इस विषय में भी कोई निश्चित सूचना हमें भामह से पूर्व उपलब्ध नहीं होती। दंडी ने गद्य काव्य के आख्यायिका और कथा भेद नाम से उद्दिष्ट करके उनके पूर्वाचार्य प्रोक्त प्रसिद्ध लक्षणों का खंडन किया है। इस खंडन में किल निपात का प्रयोग इस भेद की ऐतिहासिकता को सूचित करता है। इन भेदों के दंडी द्वारा खंडनीय स्वरूप को समझने के लिए इनका भामह सम्मत लक्षण प्रथम देना उचित होगा। भामह के आख्यायिका और कथा के लक्षण के तत्वों को हम बाह्य और अंतरंग दो वर्गों में रख सकते हैं। आख्यायिका के क बाह्य तत्व असंस्कृत भाषा आ उच्छ्वासों में विभाजन, ई नायक द्वारा अपने साथ घटी घटनाओं तथा अपनी चेष्टाओं का स्वयं वर्णन, ई वक्त्र अपरवक्त्र छंदों का जब तक प्रयोग, ऊ कवि के अभिप्राय विशिष्ट कथनों से युक्त होना, ख आंतरिक तत्व अक्लिष्ट एवं श्रुति सुखद शब्दों अर्थों और समासों से युक्त गद्य, आ उदात्त अर्थ, ई कन्याहरण युद्ध आलंबन विभाव का भी प्रलंभ एवं अभ्युदय। अर्थात आख्यायिका का मुख्य रस वीर होना चाहिए तथा श्रृंगार उसका अंग। कथा असंस्कृत में असंस्कृत प्राकृत या अपभ्रंश में निबद्ध हो सकती है, इसमें उच्छ्वास नहीं होते। ई अन्य लोग नायक का चरित्र बताते हैं, नायक अपना चरित्र स्वयं नहीं कहता, कुलीनजन अपने गुणों का प्रकथन स्वयं कैसे करें। ई वक्त्र अपरवक्त्र छंदों से युक्त नहीं होती। भामह के इस कथन से दो बातें स्पष्ट हैं, क उन्होंने आख्यायिका और कथा में भेद जिन तत्वों के आधार पर माना है वे बाह्य वर्ग के हैं, ख वे आख्यायिका के आंतरिक तत्वों को कथा पर भी लागू समझते हैं, किंतु कथा में उच्छ्वास के निषेध से यह बात नहीं स्पष्ट होती कि उन्हें कथा का विभाजन करना ही अभिष्ट अनभिष्ट है या वे विभागांशों के लिए उच्छ्वास संज्ञा का निषेध कर रहे हैं। अब हम अपने व्याख्य ग्रंथ की ओर आते हैं। 23वें श्लोक के 3 पादों में गद्य का लक्षण और गद्य काव्य के 2 मुख्य भेदों का नाम निर्देश करने के बाद चतुर्थ पाद से आचार्य दंडी ने क आख्यायिका का पूर्वाचार्य सम्मत लक्षण उस पर अपनी विमति के साथ प्रस्तुत करना प्रारंभ किया है। 24वें श्लोक में लक्षण के प्रथम तत्व का निरूपण किया है। श्लोक नायके नैव वांचान्या नायके ने तरेण वा स्वगुणाविष्क्रिया दोषौ नात्र भूतार्थ संसतः। इन दोनों भेदों में आख्यायिका जैसा कि प्रसिद्ध नायक द्वारा ही कही जानी चाहिए, ख दूसरी कथा नायक द्वारा या किसी और के द्वारा, इनमें अपने गुणों को स्वयं प्रकट करना घटित बात को कहने के कारण दोष नहीं होता। अब हम अपने दंडी ने इस संदर्भ में यत्र तत्र कुछ अंतर के साथ प्रायण भामह की शब्दावली उद्धृत की है। भामह ने आख्यायिका में अपने चेष्टित वृत्त को नायक द्वारा स्वयं कहा जाना आवश्यक बताया है, जबकि कथा में अन्य किसी के द्वारा। उन्होंने कथा में नायक के द्वारा अपनी करनी का बखान अकुलीनजन का कृत्य बताकर उसका स्पष्टतः निषेध किया है, किंतु दंडी ने नायक के द्वारा या अन्य के द्वारा कहकर विकल्प प्रस्तुत किया है। स्पष्ट है कि इस अंश में दंडी किसी और आचार्य के मत को प्रस्तुत कर रहे हैं। भामह का कथन यहाँ एक अन्य दृष्टि से शिथिल है। अपनी चेष्टाओं का वर्णन कथा में यदि अकुलीन कृत्य है तो वह आख्यायिका में अकुलीन क्यों नहीं। दंडी ने जबकि अत्र कहकर आख्यायिका और कथा दोनों में अपने गुणों के प्रकथन को दोष इसलिए नहीं माना क्योंकि यथार्थ बात कहना आत्मश्लाघा नहीं है। दंडी के दश कुमार चरित में प्रत्येक उच्छ्वास के नायक के द्वारा आपबीती स्वयं सुनाई गई है। श्लोक अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्य नैरुदीरणात् अन्यो वक्ता स्वयं वेत्ति की दृग्वा भेद कारणम्। अपितु वहां आख्यायिका में भी नायक से अन्यों के द्वारा कहने के कारण नायक द्वारा ही कही जाने के नियम का अभाव देखा गया है, अथवा वर्णन करने वाले और कोई हैं या नायक स्वयं है, यह कैसा आख्यायिका और कथा के भेद का हेतु है। आख्यायिका और कथा के एक भेदक हेतु को प्रस्तुत करने के बाद आचार्य दंडी ने प्रकृति 25वें श्लोक में उसका खंडन दो आधारों पर किया है। लक्षण लक्ष्यों के आधार पर बना करते हैं। आख्यायिका में भी कथा नायक के द्वारा ही कही जानी चाहिए, यह नियम आख्यायिका ग्रंथों में दृष्टिगोचर नहीं होता, उनमें भी नायक से भिन्न लोग वर्णन करते हैं। बाण का हर्षचरित आख्यायिका माना जाता है, उसमें नायक हर्षवर्धन है पर वर्णन कवि स्वयं करता है, हर्षवर्धन नहीं। पतंजलि के अनुसार वासव दत्ता आख्यायिका है, यह पीछे पृष्ठ 59 पर कहा जा चुका है, पर उसमें भी अपने चरित्र का वर्णन नायक द्वारा स्वयं नहीं करता। ख लक्षण में व्यावर्तक धर्मों का समावेश होना चाहिए, वक्ता कौन है यह व्यावर्तक धर्म नहीं है, अतः वक्ता नायक स्वयं है या उससे भिन्न कोई और कवि या कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध कोई पात्र है, यह कैसा भेदक लक्षण है।